प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 27 दिसंबर 2016 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों आप सभी के साथ ही विशेष रूप से स्वागत करता हूं मैं अपने उन 15 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की फरवरी मार्च में होने वाली 15 दिन की क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन नौजवान प्यारे साथियों का नाम है दीपू वर्मा आजमगढ़ से, प्रदीप कुमार गोराई चांडिल झारखंड से, चंदन सिंह शिमला हिमाचल प्रदेश से, कुंदन सिंह सतना मध्य प्रदेश से, घनश्याम भारद्वाज शिमला हिमाचल प्रदेश से, महेंद्र कुमार भोजराज भगत गोंदिया महाराष्ट्र से, विक्रम जैन बालाघाट मध्य प्रदेश से, पूजा कुमारी वर्मा शेखपुर बिहार से, अनूप चंद्र चंदपुरा उत्तर प्रदेश से, मयंक त्रिपाठी आपका केवल स्टेट लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश से, पंकज मौर्य रेवाड़ी हरियाणा से, सुमन कैथल हरियाणा से, संदीप कुमार शर्मा दौसा राजस्थान से, रानी राजपूत इंदौर मध्य प्रदेश से और ज्योत्सना रत्नु जयपुर राजस्थान से। तो दीपू प्रदीप चंदन कुंदन घनश्याम महेंद्र विक्रम पूजा अनुप मयंक पंकज सुमन संदीप रानी और ज्योत्सना आप सभी 15 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों अब स्वागत के इस क्रम के बाद मैं एक ऐसे स्टेज पर आ रहा हूं जहां दो स्टूडेंट्स को बधाई देने का अवसर मिला है और इसमें से पहले स्टूडेंट हैं राहुल राय जो हमारे सेकेंड बैच के स्टूडेंट रहे हैं और हमारे जो ऑडियो के जो पुराने श्रोता हैं वो राहुल राय के नाम से बहुत अच्छे तरीके से परिचित होंगे जो अभी MIT अमेरिका इंस्टीट्यूशन में हैं और वहां जाने के बाद से उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं बहुत अच्छा नाम कमाया है। मित्रों उन्होंने एक सूचना दी है और सूचना यह दी है कि उन्होंने एक रिसर्च पेपर वहां प्रेजेंट किया था वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। उनके उस रिसर्च पेपर को सर्वश्रेष्ठ रिसर्च पेपर चुना गया और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के 5 सालों के सर्वश्रेष्ठ रिसर्च पेपर के इंडेक्स में भी उसे शामिल किया गया है। राहुल राय ने लिखा है कि सर 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन मेरा जन्मदिन भी होता है और मेरे लिए यह एक बर्थडे गिफ्ट की तरह है। मैं अपनी इस सफलता का श्रेय आपको अपने AFE परिवार व AFE सेकेंड बैच के अपने सभी बैचमेट्स को देना चाहूंगा। यह आपके मार्गदर्शन व मेरे बैचमेट्स के लगातार उत्साहवर्धन के कारण ही संभव हुआ है। तो राहुल मैं आपके इस बहुत शानदार सफलता के लिए अपने सभी प्रिय श्रोताओं की ओर से आपके सेकेंड बैच के सभी साथियों की ओर से एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं और हम सब ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि आप लगातार निरंतर इसी तरह से सफलता की ऊंचाइयों को छूते रहें देश ताकि आप पर गर्व कर सके। और नो डाउट कि हम सब जो आपसे जुड़े हुए हैं आपके इन सफलताओं को जानकर बहुत गौरवान्वित अनुभव करते हैं। तो राहुल एक बार फिर से हम सब की तरफ से बहुत बधाइयां और भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं। मित्रों अब जो दूसरी बधाई है उस मुझे मेल मिला है ये ओम शिव पांडे का है। इन्होंने लिखा है कि इनका यूपी ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए चयन हो गया है और इन्होंने केवल यही सूचित किया है कि इसका श्रेय वो बहुत कुछ afa.com को देना चाहते हैं। तो ओम शिव। मैं अपने सभी प्रिय श्रोताओं की ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से आपको इस सफलता के लिए बधाई देता हूं और भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी। और आपने इसका श्रेय afa.com को दिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद भी देता हूं। तो मित्रों, इसके बाद अब हम लोग आते हैं आज के न्यूज एनालिसिस पर। मित्रों, आज के न्यूज एनालिसिस को मैं थोड़े से दूसरे तरीके से आप लोगों के सामने पेश करूंगा। दूसरे तरीके का मतलब है कि आज चूंकि मेरे पास न्यूज की दो खबरें हैं और इसके बाद दो तीन खबरें न्यूज पेपर्स से भी हैं, ऐसी स्थिति में मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं किसी एक टॉपिक को पकड़कर आपके साथ बहुत विस्तार से उस पर बातचीत कर सकूं, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी बातें उनके बारे में बताना चाहूंगा। मित्रों, AIR न्यूज की जो पहली खबर थी वो आपने सुनी कि हमारे वित्त मंत्री जी कल फरीदाबाद में जो इंडियन रेवेन्यू सर्विस के जो ऑफिसर्स होते हैं, वो कस्टम एक्साइज के भी उसमें होते हैं और उसमें इनकम टैक्स के भी ऑफिसर्स होते हैं, जो सिविल सर्विस का ग्रुप ए जो सर्विसेज होती हैं जिसमें आप अपीयर होना चाह रहे हैं, तो उनकी ट्रेनिंग फरीदाबाद में होती है। हमारे यहां के जो स्टूडेंट थे दिलमिल सिंह, उन्होंने मुझे सूचित भी किया था कि सर मैं अब शायद 3-4 दिन पहले की ही बात है कि मैं अब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन करने जा रहा हूं। और इसके बाद उन्होंने ज्वाइन करने के बाद अपनी एक बड़ी खूबसूरत बड़ी स्मार्ट सी फोटो भी मेरे व्हाट्सएप पर भेजी, तो मैं उनको अपने सभी प्रिय श्रोताओं की ओर से, एकेडमी की पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत इस सफलता के लिए बधाई देता हूं। और इस बार फिर से वो IAS के लिए अपीयर हुए हैं, अभी दिसंबर में उनका एग्जाम पूरा हुआ है और हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अब वो जो चाहते हैं वह उन्हें इस एग्जाम के माध्यम से प्राप्त। तो अचानक जैसे ही मैं वित्त मंत्री जी की खबर पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में दिलमिल सिंह की तस्वीर उभर आई। तो मित्रों, जो वित्त मंत्री जी ने वहां जो बात कही है, बहुत ही सिंपल सी बात कही है कि हमें अपने यहां के करों को निचले स्तर पर ले जाना होगा। यानी कि सिंपल सी बात है कि जो हमारे यहां टैक्स की जो दर है उसे कम करनी होगी। मित्रों, ये बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है, बहुत ही सरल स्टेटमेंट है। और सच पूछे तो अब सिविल सर्विस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप अगर मेंस के उठा करके देखें तो इसी तरह के सरल सरल स्टेटमेंट को ही आधार बना करके पूछे जाते हैं। बस फर्क इतना होता है कि आप इन्हें कितने अच्छे तरीके से हैंडल कर पाते हैं, उत्तर कितने अच्छे दे पाते हैं। क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि अगर प्रश्न सरल है तो उनके उत्तर भी सरल होंगे। जैसे निचले स्तरों पर कर को लाया जाना चाहिए, अगर इसी पर आपको पूछ दिया जाए कि भारतीय कर व्यवस्था का विश्लेषण करते हुए इसके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए, बस खत्म हो गई बात। तो अब आपको हमारे जो टैक्स का जो स्ट्रक्चर है वो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे यहां जो टैक्स लिया जा रहा है वो कितने हाई रेट पर है, दुनिया की तुलना में वो कितना है। और इसके बाद फिर आपको देखना होगा कि यदि टैक्स रेट कम कर दिए जाते हैं तो एक स्थिति यह भी तो हो सकती है कि सरकार की आय कम हो जाए और हम ऑलरेडी राजकोषीय घाटे से गुजरते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप उसको कैसे मैनेज करेंगे। लेकिन जब आप एक्सप्लेन करेंगे, इसकी एनालिसिस करेंगे, तो फिर एक दूसरा रास्ता आपको और दिखाई देता है। और वो रास्ता यह है मित्रों कि अगर टैक्स के रेट को कम कर दिया जाए तो भारत में टैक्स इवेजन का प्रतिशत बहुत हाई है, मतलब हमारे यहां टैक्स बचाते नहीं है, टैक्स की चोरी करते हैं। देखिए, टैक्स बचाने और टैक्स चोरी करने में फर्क है। टैक्स बचाने का मतलब है कि सरकार ने जो भी प्रोविजंस किए गए दिए हैं उन प्रोविजंस का इस्तेमाल करके आप टैक्स बचाते हैं। जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा कि आप इंश्योरेंस ले लीजिए तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, है ना। कल हम लोग थोड़ी सी बात कर रहे थे आपको दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ पर, तो आप शेयर खरीद लीजिए, साल भर तक रखे रहिए तो उसकी जो आमदनी हो जाएगी उस पर आपको टैक्स नहीं लगेगा। तो ये टैक्स बचाने के जो सरकार के वैधानिक तरीके हैं, यदि हम उसके आधार पर टैक्स बचाते हैं तो ये टैक्स बचाने का तरीका हुआ। टैक्स चोरी का मतलब है गलत तरीके से टैक्स, यानी टैक्स देना ही नहीं। तो भारत में टैक्स इवेजन बहुत है, टैक्स की चोरी बहुत ज्यादा है। और उसका एक बहुत बड़ा कारण बताया जाता है मित्रों कि टैक्स के रेट हमारे बहुत हाई है। चाहे हम इनडायरेक्ट टैक्स को लें, चाहे हम डायरेक्ट टैक्स को लें, चाहे हम कॉरपोरेट टैक्स को लें, इसके रेट्स बहुत हाई हैं। देखिए होता यही है, एक मनुष्य की बुद्धि है कि जब उसको लगता है कि यार ये 1,00,000 रुपए की कमाई है, इसमें से मुझे 30,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा, तो इस 1,00,000 रुपए की कमाई को मैं दिखाऊं ही नहीं तो 30,000 रुपए तो मुझे तुरंत फायदा हो जाएगा। तो जब चूंकि फायदा उसको बड़ा दिखाई देता है तो वो बचाने की सोचता है। लेकिन अगर उसको ये लगता है कि यार ये 1,00,000 रुपए है, 1,00,000 रुपए में तो केवल 10-15,000 ही तो टैक्स देना है, तो 10-15,000 रुपए दे दो, 10-15,000 रुपए के लिए क्यों इसको हम काले धन में कन्वर्ट करें, ब्लैक मनी में कन्वर्ट करें, ये लीगल बना रहेगा हमारे पास, तो 10-15,000 रुपए चलो दे दो, तो वो देने की सोचेगा। आपको आश्चर्य होगा भारत में स्थिति आप जानते हैं, यह आंकड़ा आपको मालूम भी होगा कि केवल 2.25 करोड़ लोग टैक्स देते हैं। सोच करके देखिए कि 125 करोड़ लोगों में केवल 2.25 करोड़ लोग टैक्स देते हैं, टैक्स पेयर है। तो यह बहुत ही दुर्भाग्यजनक स्थिति है। तो मित्रों जब टैक्स के रेट आप लो कर देंगे तो बट नेचुरल है कि जो टैक्स देने वालों की संख्या है वो बढ़ जाएगी, और जब टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ जाएगी तो हो सकता है कि हमारा टोटल टैक्स कलेक्शन काफी बढ़ जाए। जैसे अभी जो हमारी जो जीडीपी है, उस जीडीपी में टैक्स के जरिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस के जरिए हमको केवल 16.5% मिलता है, 16.5% जो हमारा जीडीपी है वो टैक्स के जरिए आता है, जबकि दूसरे देशों में जो डेवलप्ड कंट्री है वहां लगभग 35% उनको सिर्फ टैक्स से मिलता है। तो मित्रों अगर ये टैक्स रेट कम कर दिए जाते हैं तो चूंकि टैक्स देने वालों का दायरा बढ़ जाएगा तो जो टोटल कलेक्शन है वो डेफिनेटली बढ़ेगा, ऐसा अर्थशास्त्री मानकर चलते हैं। तो अब आप देखिए कि ये प्रश्न छोटा सा था, सरल सा था, लेकिन जब आप इसकी एनालिसिस करने लगते हैं, तथ्य लाने लगते हैं, आंकड़े जुटाने लगते हैं, तो चीजें काफी महत्वपूर्ण तरीके से सामने आने लगती हैं। तो मित्रों ये एक पहली खबर थी। इसके बाद जो दूसरी खबर थी वो थी अग्नि 5 जो मिसाइल जो छोड़ी गई है, उसके बारे में आप लोगों ने न्यूज में सुना है और अखबारों में भी काफी आज छपा है, तो आप उसको बहुत ध्यान से देख लें। मैं दैनिक भास्कर के आपको एक क्लिपिंग्स भी प्रोवाइड कर रहा हूं जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से इसको मेंशन किया है, ये उसका एडिटोरियल कमेंट है। 2-3 चीजें इसमें आप ध्यान रखिएगा। एक तो यह है कि यह इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है, मतलब अंतर महाद्वीपीय मिसाइल है। भारत के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो क्षमता है वो 5,000 किलोमीटर से ज्यादा ही है। ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि भारत ने अभी तक जो छोड़ी थी वो 700 किलोमीटर तक की मार करने वाली मिसाइल थी जो 2012 में छोड़ी थी, यानी कि 2012 के बाद 16 में अगर वो 700 किलोमीटर से 5,000 किलोमीटर तक की मिसाइल बना सकती है और वो भी स्वदेशी तकनीक से, तो यह भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं मित्रों यहां आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि अभी दिसंबर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था मेंस में अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां, उसी के बेस पर मैं कह सकता हूं कि हो सकता है कि आगे ये पूछा जाए कि मिसाइल्स के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां, और डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी उसकी उपलब्धि है क्योंकि अब दुनिया के केवल 5 ही देश ऐसे हैं जिन्होंने इस तरह के परीक्षण किए हैं और भारत अब उनके क्लब में शामिल हो गया है। मित्रों ये 2 खबरें थी जो न्यूज़पेपर से थी। अब मैं 2-3 खबरें हैं जो आपके काम की होंगी, खासकर मेंस की दृष्टि से अब मैं न्यूज़पेपर से थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूं। एक मित्रों खबर है, खासकर ब्रिटेन की खबर है। ब्रिटेन में हुआ ये कि अभी 25 दिसंबर के बाद और जो वहां ट्रेन चलती हैं 25 दिसंबर वो ट्रेन बिल्कुल बंद हो गई, मतलब ट्रेन उस दिन चली ही नहीं, ट्रेन का ही संचालन नहीं हुआ। जब सरकार से इस बारे में पूछा गया तो सरकार ने कहा कि नहीं, हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है क्योंकि पूरी की पूरी जो परिवहन व्यवस्था है उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है, यानी कि सरकार ने पूरा हाथ खींच लिया कि हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, यानी कि पूरा का पूरा जो नेटवर्क है ट्रेन का, रेल का, वो प्राइवेट लोगों के हाथ में है। बल्कि सरकार के प्रवक्ता ने यहां तक कह दिया कि यदि एक दिन ट्रेन नहीं चली तो ऐसा क्या हो गया है। तो दोस्तों ये एक मैं आपको इस उदाहरण को आपके सामने केवल इसलिए रख रहा हूं कि जैसा ब्रिटेन और अमेरिका ही 2 ऐसे देश हैं जिन्होंने 1980 के आसपास एक नई थ्योरी दी थी जिस पर लिबरलाइजेशन हुआ। इन्होंने थ्योरी दी थी उस समय मार्गरेट थ्रेचर वहां की प्रधानमंत्री थी, कि सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है, सरकार का काम केवल लॉ एंड ऑर्डर को देखना है, इसलिए सरकार को ये सारी चीजें प्राइवेटाइज कर देनी चाहिए, रेल और फलानी फलानी अस्पताल और एजुकेशन सब कुछ, सरकार को इनमें नहीं उलझना चाहिए। और वहीं से फिर ये दौर चला है, प्राइवेटाइजेशन का दौर वहीं से चला जो हमने 1990 के बाद भारत में अपनाया और वर्तमान में उसकी स्थिति देख रहे हैं। तो आप देखिए कि स्थिति ब्रिटेन में कहां तक पहुंच गई है, मतलब ये एक उदाहरण है जिसके आधार पर आप लिबरलाइजेशन में जो सरकार की नीतियां होती हैं उनकी समीक्षा कर सकते हैं। मान लीजिए पूरे के पूरे स्कूल प्राइवेटाइज कर दिए जाए, रेल व्यवस्था प्राइवेटाइज कर दी जाए, एयरलाइंस प्राइवेटाइज कर दिए जाए, टीवी चैनल्स प्राइवेटाइज कर दिए जाए, तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं आगे चलकर। तो एक ये उदाहरण आप इस उदाहरण को रखते हुए आप अपनी बात कह सकते हैं। मित्रों जो दूसरी खबर है इसके लिए मैं आपको इकोनॉमिक टाइम्स का एडिटोरियल कमेंट भी प्रोवाइड कर रहा हूं कि कर्नाटक सरकार ने अभी ये कहा है कि वह जो हां जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनसे कहा गया है कि वो अपने यहां 100% रिजर्वेशन कर दें कि वो केवल मतलब कर्नाटक के लोग को ही नौकरी देंगे। ये एक बहुत ही रिएक्शनरी व्यू है एक ऐसे समय में जबकि पूरी दुनिया अपने दरवाजे खोल रही है, वहां कर्नाटक इस तरह की बात कर रही है कि वहां की जो प्राइवेट कंपनीज होंगी वो केवल कर्नाटक के लोगों को ही नौकरियां देंगी। ये एक बहुत ही खतरनाक संकेत है अगर सभी राज्य ऐसा करने लगेंगे। कहां तो हम एक तरह से जीएसटी के जरिए अपने देश के पूरे बाजार को एक करने की कोशिश कर रहे हैं, लिबरलाइजेशन के माध्यम से पूरी दुनिया के बाजार को एक करने की कोशिश कर रहे हैं, और कहां कर्नाटक के इस आदेश में यही है कि दूसरे राज्य का व्यक्ति कर्नाटक में नौकरी नहीं कर सकता है। मतलब एक पूरी की पूरी जो नीति चल रही है उसके विरोध में खड़ी आपको एक नीति दिखाई देगी। दूसरी चीज आप इसमें देखेंगे कि आगे चल करके हो सकता है कि लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएं और हाई कोर्ट में जाएं और फिर ये ऑर्डर ही कैंसिल हो जाए, क्योंकि 50% से ज्यादा आप रिजर्वेशन दे ही नहीं सकते। लेकिन दूसरा प्रभाव इसका यह भी तो हो सकता है मित्रों की जो वहां जो कंपनीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अगर उनको बाध्य किया जाएगा कि वो कर्नाटक के ही लोगों को लें और कर्नाटक में उनको उतने प्रोफेशनल्स नहीं मिल रहे हैं तो क्या करेंगे। हो सकता है कि वो फिर अपनी कंपनी लगाए ना लगाए छोड़ करके बाहर जाने लगे। तो ज्यादा अच्छा है कि कर्नाटक सरकार इसकी जगह पर अपने लोगों को प्रोफेशनल बनाए, उनमें स्किल डेवलप करे, इस तरह के तब जाकर के बात बन सकेगी। और यही यदि दूसरे राज्यों ने भी इस तरह का कदम उठाना शुरू कर दिया तो आप कल्पना करके देखिए कि हमारे देश की स्थिति क्या हो सकती है। तो ये एक कर्नाटक का उदाहरण है। तीसरी और आखिरी खबर मित्रों अध्यादेश को लेकर के है कि अभी कुछ दिनों पहले, एक सप्ताह पहले, शत्रु की जो संपत्ति होती है उसके बारे में एक अध्यादेश सरकार जारी किया। ये पांचवीं बार इसी इशू पर अध्यादेश जारी किया गया है। एक शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 में आया था, मतलब आपको मालूम है कि देश के विभाजन के बाद या बाद में भी जो लोग पाकिस्तान चले गए उनकी संपत्ति यहां रह गई है उसे कहा जाता है शत्रु संपत्ति। तो उस शत्रु की संपत्ति पर भारत सरकार का अधिकार हो, इसको लेकर के अध्यादेश जारी किया गया है। तो शत्रु संपत्ति पर आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, वक्त नहीं है कि हम उस पर बात कर सकें। और इसमें एक जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो ये है कि इस तरीके से बार बार अध्यादेश ला करके और चीजों को आगे ले जाना कितना डेमोक्रेटिक है, क्योंकि इस पर राष्ट्रपति जी ने भी अपनी थोड़ी सी नाराजगी जाहिर की है कि इस प्रकार बार बार अध्यादेश के जरिए इस बात को आगे बढ़ाया जा रहा है, जबकि एक्ट ला करके पार्लियामेंट में इसे पारित कराया जा सकता है। तो ये जो अध्यादेश ऑर्डिनेंस वर्सेस एक्ट का जो एक द्वंद होता है डेमोक्रेसी में उसके लिहाज से एक अच्छा उदाहरण है। तो मित्रों ये न्यूज़पेपर्स से था, और कुछ और मैं आपको क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं, और डेफिनेटली जितनी भी क्लिपिंग्स हैं वो इम्पॉर्टेंट क्लिपिंग्स ही होती हैं, आप अपने हिसाब से जो आपके लिए जरूरत हो वो आप सब देख लेंगे। एक क्लिपिंग्स बिजनेस स्टैंडर्ड की है दोस्तों, हिंदी में है, वो खासकर स्वतंत्र निदेशकों की स्थिति को लेकर। टाटा में अभी जो आप एक विवाद देख रहे हैं साइरस मिस्त्री और रतन टाटा के बीच में, अब फिर उसमें नसलीवाड़िया जी भी उस विवाद में शामिल हो गए हैं, उस बहस में शामिल हो गए हैं। तो स्वतंत्र निदेशकों का क्या रोल होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, उनका कैसे चयन होना चाहिए, उनको कैसे अपनी भूमिका निभानी चाहिए, इसको लेकर के एक बहस है। और मुझे लगता है कि यदि ये बहस आगे बढ़ती रही तो यह अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा, तो प्लीज आप लोग उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो मित्रों ये न्यूज़पेपर्स से था, अब मैं आता हूं अंतिम चरण पर जो ईमेल का चरण है। ईमेल लिखने वाले सभी अपने मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं डॉक्टर कृष्ण कुमार यादव, दरभंगा बिहार से, सुमित पॉल, प्रशांत अग्रवाल हाथरस उत्तर प्रदेश से, हरिगोविंद श्रीवास्तव सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से, पावेल दत्ता कोलकाता से, ज्योति यादव, अभिषेक रंजन, उपेंद्र कुमार गुप्ता और हेमंत कुमार सिंह, आप सबका भी मित्रों बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।